गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। ब्रह्म भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज, श्री अखंडानंद जी महाराज और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 15वां और 16वां श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते,
ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते,
यजन्तः मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम्, अहं क्रतुरहं यज्ञः, स्वधाहमहमौषधम्, मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम्, अहम् अग्निरहम् हुतम्, ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये, यजन्तः मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम्, अहं क्रतुरहं यज्ञः, स्वधाहमहम् औषधम्, मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम्, अहम् अग्नि अहम् हुतम्। हरिः ॐ। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने, माम विश्वतो मुखम्, कहते हैं मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, यजन्तः पूजन करते हुए, एकत्वेन एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से, उपासते जो उपासना करते हैं, अन्य दूसरे, पृथक्त्वेन पृथक भाव से, अर्थात स्वामी सेवक के भाव से और किसी भी भाव से, बहुधा बहुत प्रकार से, अपि भी उपासते हैं। क्या अर्थ हुआ? कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात कुछ है वासुदेवम सर्वम इति जगत, तो इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथकत्व भाव से, अर्थात स्वामी सेवको, या तो ये वैष्णव लोग हैं वो कृष्ण को थोड़ा बाल कृष्ण का रूप में देखते हैं। तो तब कहा कि क्योंकि श्रोत्र कर्म अर्थात वेद विहित कर्म में मैं हूं और यज्ञ में मैं हूं, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में हूं, औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में हूं, मंत्र में मैं हूं, घृत में मैं हूं, अग्नि में मैं हूं, हवन रूप में हूं, क्रिया में भी हूं। देखिए मार्ग तो अनेक हैं किंतु गंतव्य तो एक ही है। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जो कहते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है, ज्ञानी लोग उसको अलग अलग रूप से पहचानते हैं, जानते हैं। तो यात्रा की विधियां बहुत हैं, लेकिन जब तक यात्री नहीं मिट जाता, यात्रा पथ नहीं मिट जाता, यात्रा की विधियां नहीं मिट जाती, तब तक गंतव्य उपलब्ध नहीं होता है। नदी दौड़ करके जाती है समुद्र में मिल गई, समुद्र में मिल गई तो नदी स्वयं नहीं रह जाती है, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए दो व्यक्तियों के लिए एक ही मार्ग नहीं हो सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव बड़ी सुंदर ढंग से समझाते हैं। एक मां के तीन चार बेटे हैं, चारों की रुचि अलग अलग है, चने का बेसन तो एक ही है, एक ही बेसन से वो मां खमण बना के देती है, दूसरे को चीला बना के देती है, चौथे को वो कोई भजिया गाठिया बना के देती है, और एक एक और बच गया तो उसको लड्डू बना के देती है, बेसन तो एक है। तो जो व्यक्ति हैं सबकी रुचि रुचि अलग है, तो कोई कर्म से, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, कोई जप से, कोई तप से, कोई हठ योग से, कोई लय योग से, कोई नाद योग से, कोई भक्ति योग से, कोई कर्म योग से, कोई ज्ञान योग से, कोई राजयोग से, कुंडलिनी योग से। हमारे गुरु महाराज कहते हैं श्रेष्ठ योग कौन सा है, कहते हैं बैड पेन योग। बैड पेन योग क्या है, जो इंसान बीमार है तो उसको मल मूत्र के लिए वो उठ नहीं सकता है, तो उसको जो बेड पेन देते हैं ना कि भाई इसी में आप मल मूत्र कर लो, तो वो जो सेवा करता है वो सबसे बड़ा योग, ऐसा गुरु महाराज हमेशा कहते थे। तो हमें यात्रा कहां से आरंभ करना है, हम कौन से मार्ग पर जाएं, जहां आप हैं खड़े वहां से जाएं। अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं। आप वहां से ही यात्रा शुरू करेंगे जहां पर आप हैं। हमारी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु एक नहीं हो सकता, दोनों व्यक्ति की अलग अलग रुचि है, अलग अलग गति है, अलग अलग मति है, अलग अलग शक्ति है। वो एक क्षमता संपन्न व्यक्ति की क्षमता दूसरे में हो ऐसे जाने की जरूरत नहीं, वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि यात्रा का अंतिम पड़ाव एक हो सकता है, क्योंकि उस पड़ाव पर व्यक्ति स्वयं को मिट जाते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ये आइडेंटिटी नहीं रहती है, व्यक्तिगत वहां पर नहीं रहता है। जब तक मैं व्यक्ति हूं तब तक मैं भी वो ही करूंगा जो भिन्न होगा, अलग ही सोच है। सत्य को, इस सत्य को जब तक नहीं समझेंगे, मनुष्य के धर्म का इतिहास अकारण ही रक्तपात हो जाएगा। रक्तपात क्यों होता है, वॉट आई से इज करेक्ट, आई से कट, वैसे दम मारते हैं, क्यों कहते हैं। प्रत्येक को ऐसी प्रतीति होती है कि वह जिस मार्ग पर जा रहा है वही सही है, इस प्रतीति में कोई भूल नहीं है, और दूसरे जो कहते हैं वो तमाम मिथ्या है, भ्रांति भी घर घर जाती है। तो वैसे ही उपद्रव प्रारंभ होता है, मेरा ही मार्ग सही, वो अहंकार है। अहंकार एक निष्कर्ष पर अनजाने ले लेता है कि जो मेरे लिए सही है वही सबके लिए सही है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसलिए धर्मों के नाम पर जो उपद्रव हुए हैं, जो क्लेश हुए हैं, वो धर्मों के नाम से नहीं होते। धर्म तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, वो मजहब तो नहीं सिखाता है, ये लोगों के व्यक्तिगत अहंकारों के कारण होता है। मेरा अहंकार यह मानने को, किसी एक शहर में हम 10 दिन रुके तो चैनल वाले लोगों ने कहा स्वामी जी हम आपका 3 घंटा तक लाइव इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो कीजिए। तो लाइव इंटरव्यू क्या है, क्वेश्चन आंसर, आप स्टूडियो में बैठिए, बाहर से लोग बाग प्रश्न पूछ रहे हैं, जो जो प्रश्न पूछेंगे चित्र विचित्र भी पूछते हैं, जिसका जो मर्जी कुछ भी पूछते हैं। तो एक ने कहा कि महाराज जी हम आपको बहुत चाहते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, मेरा आपके आश्रम में मंदिर है क्या, मैंने कहा है ना, ये मंदिर को बंद करवाओ, स्कूल मदरसा करवा दो तो ठीक है, ये मंदिर पूजा पाठ घंटी बजाना हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। मैंने कहा हाँ, आपका शुभ नाम क्या है, बोले मोहम्मद अजीज, और ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके यहां भी काबा है ना, उधर पत्थर है उसको हटवा दो, होता है क्या, तो बड़ा मुश्किल होता है। मेरे यहां अगर काबा है तो हमारे यहां काशी है, तुम्हारा काबा बढ़िया है अच्छा है, हमारा काशी भी बढ़िया है अच्छा है, नहीं मेरी मां ही ठीक है, अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं, मेरे लिए मेरी माँ ठीक है। जिसकी माँ है वो उसी के लिए ठीक हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरी माँ की ममता जो मेरी माँ मुझे देगी वो आपको नहीं दे सकती। आप तो पराए बच्चे हो, कितना भी हो फिर भी जो ये जब नाखून काटते हैं ना, तो नाखून काटते हैं नाखून के नीचे वाला नहीं काटते, क्यों? दर्द होता है। तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि ध्यान रहे कि दूसरों को गलत करने में जो इंसान लग जाता है उसकी शक्ति उसकी ऊर्जा मार्ग कभी सही नहीं हो सकते। अभी हमको अहमदाबाद में आकर के 18 साल हो जाएंगे, तो 18 साल हो जाएंगे तो एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, तो जैसे कि 2 अक्टूबर को और 30 जनवरी को सर्वधर्म प्रार्थना साबरमती आश्रम में होती है, मैं निमंत्रित किया गया, तो मौलवी साहब रहे थे स्वामी जी अब हमारी मजलिस में जाएंगे, तो उनकी मजलिस जो रही उनका जो सभा रही वहां सारे पुरुष थे, कोई महिलाएं नहीं थे। तो हमने कहा ये क्यों है भाई महिला? बोले नहीं हमारे मजहब में महिलाएं ऐसे नहीं आती। हमने कहा कैसे कहो? मोहम्मद साहब है, फातिमा है, मोहम्मद साहब के बाद में पहले फातिमा आती है, बाद में अली है, बाद में हसन है हुसैन है, तो फातिमा के बिना तो मोहम्मद नहीं है और फातिमा के बिना अली और हसन हुसैन नहीं है, तो फातिमा को तो आगे लाना चाहिए। और आपके यहां जो संत हुए हैं वो संत केवल पुरुष नहीं हुए, वो महिलाएं भी हुई हैं। राबिया एक कितनी बड़ी संत थी, आह अद्भुत थी राबिया, खुले बाल करके आधे कपड़े पहने आधे नहीं है, अल्लाह के साथ में एक रूहानियत में रहती थी। उस रूहानियत में जब रहती थी एक हाजी ने देखा ये महिला कुछ दुखी है, अपने जेब में हाथ डाली मुट्ठी भर के दिनार निकाली और वो रबिया जहां बैठी थी वहां ऐसे करके फेंक दी। रबिया शांत थी, रबिया अपने में खोई थी, अपने अल्लाह में मस्त थी, अपने मौला में मस्त थी, अल्लाह मौला के साथ में, उसको शरीर का बांध नहीं है। उस अवस्था में किसी ने दिनार उसके ऊपर फेंक दी, हठात से देखी जैसे शांत पानी में पत्थर गिर गया, क्या हो गया? देखा दिनारे पड़ी है और हाजी है अपने जेब में हाथ डाल करके और मुट्ठी भर के फिर से एक और दिनार उसके ऊपर फेंक दे। उसके पहले रबिया ने हवा में से ऐसे किया, हवा में से मुट्ठी भरी उसके ऊपर फेंक दी, अरे तू जेब से निकालता है मैं जेब से निकाल रही हूं। देखिए ये एक महिला है, मुतरमा है, मुस्लिम है तो क्या हुआ, किंतु वो एक महिलाओं का भी एक स्थान है, किंतु वो कहते हैं नहीं हमारे यहां तो महिला नहीं चलेगी। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अगली बार बुलाएंगे महिलाओं को बुलाओ, तो उनको बुरखा करना पड़ेगा, पर्दा कोई परवाह नहीं, पर्दे में आए आए तो सही। अभी क्या हो गया, नीचे थिएटर में पुरुष लोग बैठे, ऊपर गैलरी में वो महिलाएं बैठने लगी। धीरे धीरे मैंने कहा क्यों भाई, वो अपने खातून है, अपने मौला है, अपने मियां है, अपने पति है, उसे क्यों उनको अलग करते हो, घर में अलग नहीं रह सकते तो यहां क्यों अलग करते हो, बैठाओ साथ में। अब क्या हो गया 18 साल में महिलाएं स्टेज पर आती है, आकर के पूरा कार्यक्रम का आयोजन करती है। 18 साल में क्रांति हो गई है। मुस्लिम लोग है वो कभी ऐसा नहीं समझते, उनके तमाम मौलाओं की मीटिंग होती है तो हमको अतिथि विशेष बुला लेते हैं। तकलीफ क्या होती है? तकलीफ ये होती है कि मैं समझू मैं जो कर रहा हूं वही गलत का नहीं, तो क्या हो गया? तो गुरुद्वारा में जाते हैं तो हमको ये अभ्यास है कि भाई अपना सिर ढक करके जाओ। हर गुरुपर्व में कहेंगे महाराज आपको आना ही है। ब्रह्मा कुमारी का अभी 50 साल का उत्सव हुआ, जहां जहां हुआ तो बोले स्वामी जी आपको आना, हम भारत जगह में जाएंगे। क्यों? हमने अपने दरवाजे खुले रखे हैं, हमारे कृष्ण ने हमको यही सिखाया है। कृष्ण कहते हैं कर्म भी करो भक्ति भी करो ज्ञान भी करो, जो करना चाहते हो अपने घर में अपने लिए करो, किंतु दुनिया के लिए वह जक्की जिद्दी और अपनी ही बात को ठोस समझाने का प्रयत्न ना करो। वो तो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वह इंसानियत नहीं है, वो तो हैवानियत है। इसके लिए तो खून खराबा होता है, इसके लिए मैं तू तू होती है। कृष्ण कहते हैं ऐसे मत करो। कृष्ण कहते हैं कि ये दो संभावना है, दो दरवाजे खुले हैं, एक आदमी धार्मिक हो सकता है, दूसरा आदमी है वो अधार्मिक हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है कोई मुसलमान हो सकता है, किंतु कोई भी पैदा इसी हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जो पैदा होता है बच्चा हिंदू का बच्चा, वो ऐसे तिलक लगा के आता है क्या, वो चोटी रख के आता है क्या, वो जनेऊ डाल के आता है क्या, वो तीन लाइन भस्म के लगा के आता है क्या? मुसलमान का बच्चा कोई सुन्नत करा के नहीं आता, और ईसाई का बच्चा गले में क्रॉस लटका के नहीं आता, सिख बच्चे होते हाथ में कड़ा और कृपाण लेके नहीं आते, सफाई करने वालों के बच्चे हाथ में झाड़ू लेके नहीं आते, वो निर्दोष है, परमात्मा के स्वरूप है। वो बच्चे जो पैदा होते हैं वो इंसान की औलाद इंसानी ही होती है, उनका मजहब एक ही हुआ इंसानियत। वो इंसानियत है, मानव के बच्चे मानवता ही एक धर्म लेके आते हैं। लेबल तो हमने लगाया उनके ऊपर में, तिलक लगा दिया तुम हिंदू बन गए, सुन्नत करा दिया तुम मुसलमान हो गए, क्रॉस लटका दिया तुम ईसाई हो गए। अरे मैं इंसान हूं, मुझको इंसान रहने दो। किंतु ऐसा तो होता नहीं। एक उपद्रव जो होता है वो उपद्रव क्या है कि मुसलमान के बेटे को मुसलमान ही होना पड़ता है। काफी साल पहले की बात है, हम छोटे से गांव में थे सुरेंद्रनगर में, तो वहां रात में पहले पुरानी बात है कोई 30-35 साल पहले की, सत्संग में जाते तो कारें नहीं हुआ करती थी, नजदीक जाना है, जैसे प्रेमपुरी रहते और बाबुलनाथ में सत्संग है तो कार में थोड़ा जाते, जाएंगे तो 10-20 लोग साथ चलेंगे आएंगे। तो रात में जब सत्संग पूरा होता तो जहां हम रहते थे बालाश्रम में अनाथ आश्रम में, तो वहां लोग हमको छोड़ने के लिए आते थे, तो हमेशा 35-40 लोग सुबह भी साथ में चलेंगे शाम को। वहां पर एक पुलिस में पहरा रहने वाला आदमी रहता था, उसका नाम था बैलिंग। तो उसने पहले दिन हमको देखा, रात में कोई 11:30 बजे थे, सत्संग तो ऐसे ही होता है गांवों में देहातों में 9 बजे के बाद, क्योंकि लोग नौकरी धंधा करेंगे खाएंगे पिएंगे तब आएंगे। कौन है इतने लोग, कहां जा रहे हो? पुलिस है, दरोगा है, पूछना पड़ता है। तो हमने कहा नमस्ते भाई साहब, हम ऋषिकेश से आए हैं, क्या करते हो? अभी सत्संग करके आए, और क्या क्या करते हो? तो हमने कहा हम तो योगासन सिखाते। कहां सिखाते हो? तो कहा सुबह यहां सिखाते हैं, शाम को यहां सिखाते हैं, दूसरी जगह भी सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, आने के लिए कोई फीस है? कोई फीस नहीं, जो भी आना चाहे। वो शहर से कोई 7 किलोमीटर दूर धोरे धजानो डैम, तो वहां पर वो आता रहा, साइकिल में आता रहा, इतनी दूर आता रहा रोज रोज। फिर उसने हमारे गुरु महाराज से मंत्र ले लिया, पंचाक्षरी मंत्र। अभी वो मंत्र नहीं लिया, हमारा मैगजीन है दिव्य जीवन बराबर पढ़ता है। अगर वो अपने घर में ना रहे और मैगजीन आ गई तो उसकी बीवी है उसको कूड़े में डाल देगी, काफिर है मेरा पति। काफिर क्या होता है? वो मुसलमान नहीं है, वो अलग है। बीवी इतने दिन में भी अपने पति को काफिर कहती है। और यह है, हर छुट्टी के दिन आकर के शिवजी के मंदिर में बैठ के 1-2 घंटा ध्यान करके ओम नमः शिवाय बोलता रहता है, शिवरात्रि के दिन निर्जल उपवास करता है, क्या बताए एकादशी कर लेता है, हर सोमवार के दिन एक बार भोजन करता है, वो नमाज पढ़ने नहीं जाता है। तो क्या करो, जिस इंसान को जिस मजहब से ईश्वर के जिस स्वरूप से प्यार हो तो उसमें जाने का हक है। कृष्ण कहते हैं उसका कोई गलत नहीं, वो काफिर नहीं होता है, वो विधर्मी नहीं होता है। किंतु हम सोचते थे हमने छाप लगा दिए, हम कहते कि मुसलमान के बेटे को मुसलमान ही होना पड़ेगा। ये हिंदू और सिखों की जब लड़ाई होती रही, वो बड़ा लड़ाई किसकी थी? हिंदू सिखों की नहीं थी, वो पॉलिटिशियन लोग करवा रहे थे। पाकिस्तान के लोग आकर के दंगा कर रहे थे। पंजाब में आप चले जाएं, एक घर में 3 बेटे हैं हिंदू के, उसमें से एक सिख होता है। वो मां ऐसे कहती है मेरे घर में बच्चे नहीं हो रहे, शादी करके 7-8 साल हो गया, तो मन्नत कर लेती थी कि अगर मेरे घर में बेटा हो गया तो मैं बेटे को सिख बना दूंगी, गुरुद्वारा में जमा करा दूंगी। तो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको वो बाल नहीं कटवाती है, वो सिख ही बनाती है, गुरुद्वारा में मत्था टेकने ले जाती है। तो पहले तो पंजाब में गुरुद्वारा ही हुआ करते थे, बाद में दुर्गियान बनाए तो गुरुद्वारा में लोग जाते थे। हिंदुओं ने कभी नहीं सोचा कि ये कोई अलग कुछ काम हो रहा है। हर हिंदू को गुरुवाणी का पाठ पता है, हर घर में एक सिख हुआ करता था। उतनी नहीं बात है, कॉलेज में आने वाले जाने वाले लड़के एक हिंदू एक सिख सब साथ चलते थे। तो सिख क्या है, हिंदू क्या है, ये जैन क्या है, अजैन क्या है, ये हमने एक एक दीवारें बना ली। कृष्ण कहते ऐसा नहीं है ना, ऐसे मत करो। इधर से मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो कि हिंदू के घर में न पैदा होकर के मुसलमान। हम जानते हैं डॉक्टर काजी, आंखों के डॉक्टर थे, हमारे अच्छे दोस्त थे, जूनागढ़ में थे, उनका शरीर अभी नहीं रहा, ऑप्थल्मिक सर्जन थे, बड़े शिव के भगत थे। भवनाथ में जहां पर नरसिंह मेहता जब ध्यान करते थे वहां बैठकर के दामोदर कुंड में ना करके आधे कपड़े पहन करके पानी में खड़ा होकर नमः शिवाय बोलने वाला काजी। तो ये क्या बात नहीं है। अभी फरवरी में ताइवान से हमारे आश्रम में 28 लोग आए, बोले हम एडवांस योग करना चाहते। एडवांस क्या, मेडिकल साइंस मत पढ़ाओ, पतंजलि योग दर्शन पढ़ाओ, 2 घंटा भगवत गीता पढ़ाओ। उनके साथ की महिलाएं हैं वो मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी नाम गाती थी, इतना सुंदर इतने प्यार से गाती थी, गाते गाते इनकी आंखों से अश्रु चल रहे। हम तो कितने देर से पाठ कर रहे हैं, हमारी आंखों में तो अश्रु नहीं आ रहे, क्योंकि हमने अपने आप को धर्म से अलग करके रख दिया है। हाँ, युक्त नियम अयुक्त है, वो जो है वो जो उसने उसको धर्म को जान लिया है, वो जो श्लोक है जो मंत्र है भगवान भाष्यकार के, चिदानंद रूप शिवो हम शिवम, तो अपने आप को महसूस करती है मैं चिदानंद हूं, तो अपने आप को महसूस करती है हमारे धर्म में हमारे मजहब में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, हमारे मजहब में तो यही कहा है कि वो जीसस है वही भगवान का बेटा है, और तुम तो यहां बोल रहे हो कि तुम ही सीधे भगवान हो, बेटे नहीं हो, चिदानंद रूप शिवो हम शिवम, मैं ही शिव हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, और इतने सरल इतने निर्मल, उनको ये पुरुष स्त्री का भेद पता नहीं है, बैठ करके अपने हाथों से खा रहे, उंगलियों से खा रहे, उनको ये नहीं चाहिए कि टेबल चाहिए, हमारी पूरी संस्कृति को आत्मसात कर लेते हैं, और जब टेलीविजन इनको पूछता है तो बोलते हैं कि मैं पिछले जन्म में भारत में थी, अभी आकर के विदेश में आ गई तो क्या हो गया, मेरी आत्मा तो भारतीय है, ये मैं जब भारत में आती हूं, गवर्नर ने पूछा आपको अहमदाबाद में कोई तकलीफ तो नहीं है, बोले अहमदाबाद में क्यों तकलीफ हो, हम तो अपने घर में आए हैं, आश्रम में कोई मुश्किल तो नहीं है, बोले नहीं नहीं मेरी माँ पिता जो होते हैं ना ऐसे ही स्वामी जी हैं, तो ये कब हो सकता है, कृष्ण की इन बातों को ज्ञान यज्ञ चाप्यंते यजंतो माम उपासते, तुम ज्ञान से सर्वत्र मैं ही हूं, क्या कहा, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम, जो कुछ भी है जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जा जा ठिकाणी मन जाए माजे क्या जा ठिकाणी तुझी पाया धूली, तो मेरा मन जहां पर भी जाए वहां तुम ही तो हो। हाँ, वो राधा जी है उनके गांव में, वो कृष्ण भगवान के थोड़े दोस्त लोग गए थे, जाकर के कहा राधा जी तो नहीं मिली, उनकी सखियां मिली थी, तो सखियों को कहा अरे देखो हमारे कृष्ण के लिए तो बहुत लड़कियां हैं, तो तुम ब्रजभान को कहो राधा जी की जल्दी से छलिया से शादी कराए, लल्ला को शादी नहीं कराए तो राधा जीवन भर कुमारी रह जाएगी। तो राधा जी की सखियों ने कहा अरे कारी कारी गाय वो तो मीठा दूध देती है, कारी कारी बदरिया वो भी वो मीठा जल बरसाती है, अरे कारी कोयल भी मीठा बोलती है, ये तेरो कन्हैयो तीन जगह टेढ़ो है, सीधा तो खड़ा नहीं रह सकते, उससे हमारी राधा जी का ब्याह नहीं होने वाला। तो कृष्ण जी के तमाम जो दोस्त यार थे ग्वाल बाल, लला ऐसो भयो चिंता ना करो, कृष्ण ने श्रृंगार कर लिया। कृष्ण ने क्या श्रृंगार किया, टैटू गर्ल, ढाढ़ी लीला बोलते हैं वृंदावन में, टैटू गर्ल वो गुंदना चुंदना करने वाली माई, वो बन गए, वो घाघरा पहन लिया, उन्होंने एक ब्लाउज कमखा पहन लिया, उस सिर में चुन्नी डाल ली, नाक में नथरी, कान के अंदर गले में माला, और चोटी में इतने मल्लिका के फूल जुई जाए के फूल छुम छुम करते चलते हैं। आहा, वो हमारे तमिल के एक कवि कहते हैं निहाड़ाद असंगाद वाह कन्ना उन्हाड़ भुवन मुम यन्नवे असैंद असैन, अरे तुम थोड़ा धीरे चलो, ठुमकी मार के चलती हो पूरा त्रिभुवन डोलता है। वो कर्नाटक भाषा के कवि क्या बोलते हैं, कृष्णानी बेगने बारो काला लंटी के गेज नीलाथ पाउली उर्वंटे अन्य वैजयंती माला, कृष्ण तुम आओ इतना सुंदर रूप धारण करके। कृष्ण का रूप इतना सुंदर था सखिया नहीं पहचान पाई, उनका इतनी सुंदर स्त्री आओ बैठो, राधा जी को लेके आए, इसके हाथ में बनाओ चित्र। चलिया ने पूछा क्या बनाओ, हनुमान बनाओ, शिव बनाओ, आंकड़े का फूल बनाओ, धतूरी का फूल बनाओ। राधा जी कुछ नहीं बोले, कृष्ण अलग बैठे हैं उस भाव में, राधा जी अलग बैठी है अपने भाव में। तब जाकर कृष्ण ने उनके हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ से उनकी एक ठुड्डी को पकड़ा, श्री कृष्ण के स्पर्श से राधा जी को समाधि लगी है। राधा जी समाधि में बोल रही है शीश पर जगदीश लिख दो, शीश पर जगदीश लिख दो, ओठ पर मुरलीधर लिख दो, हाथ में गिरधर लिख दो, मेरी छाती में कुंज बिहारी लिख दो, पेट में दामोदर लिख दो, मेरे रोम रोम में श्याम बांके बिहारी लिख दो, छलिया भूल गए मैं क्यों आया हूं। राधा जी को आलिंगन कर लिया। ये कैसे होता है, तादात्म विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय हो जाते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जन्म एक और बात है, धर्म एक और बात है, जन्म शरीर की बात है, धर्म व्यक्ति के जीवन की रुचि की खोज है, धर्म व्यक्ति की अंतरात्मा की तलाश है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही ढंग से अपने धर्म को खोजना पड़ेगा। हमने संगीत सुनते हैं, एक हारमोनियम होता है, एक वीणा होती है, एक सितार होता है, एक बंसी होती है, एक सहनाई होती है, तो इन तमाम में संगीत में क्या होता है उसको बोलते हैं संगीत के साधन बोलते हैं। उस साधन में से संगीत उत्पन्न करना पड़ेगा। सड़ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद वादी संवादी, वो संगीत नहीं है, संगीत के साधन है। तो हमारा भी जन्म हुआ है, जीवन नहीं मिला। माता पिता हमें जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते। जीवन खोजना पड़ेगा, मृत्यु अपने से आएगा। जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में जो दूरी है उसको जीवन मत कहो, वो मृत्यु के प्रति यात्रा है। प्रति पल क्षण क्षण हम मृत्यु के प्रति जा रहे हैं। किंतु ये बहुत जरूरी बात जानने के लिए कि हमारे निजी जीवन में हम जो कहते हैं कि ये जीवन है, नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म को खोजना पड़ेगा। क्योंकि एक जो कहते हैं कि ऐसा समझे कि जो मुस्लिम घर में पैदा हुआ है, अगर वो मार्ग मेरी व्यक्तिगत रुझान में नहीं बैठता है तो वहां मैं नहीं हूं, मैं नहीं चल सकता हूं ना, उस मार्ग में मैं नहीं जा सकता हूं। एक स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर भी नहीं बन सकते, संगीतकार भी नहीं बन सकते, लेखक भी नहीं बन सकते, मूर्तिकार भी नहीं बन सकते। जिसके भीतर में जैसी रुझान हो वो धीरे धीरे करके वो अपने आप को उस प्रकृति में ढाल लेगा। जरूरी नहीं है कि पिता ये बाल काटने की दुकान चलाता है तो उनका बेटा ये करे। हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल है आंखों का, रोज 100 से अधिक ऑपरेशन निःशुल्क होते हैं। तो वहां जो ड्राइवर रहा उनके यहां बेटा हुआ, समय जी तो इस बेटे को आशीष कीजिए। छोटा बेटा था, अब होगा कोई 10-12 दिन का। तो हमने बोला देखो तुम ये मनुभाई के ड्राइवर हो किंतु हॉस्पिटल में पैदा हुए, डॉक्टरों के बीच में तुम ड्राइवर ही नहीं करोगे, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। हाँ, जब भी हम जाते रहे हॉस्पिटल में बार बार बोलते थे अच्छे से पढ़ता है कि नहीं, चिंता मत करना डॉक्टर बन जा। अभी काफी साल हो गए, 28 साल पहले की बात, अब वो डॉक्टर बन गया, ऑप्थल्मिक सर्जन। मैंने कहा इस हॉस्पिटल में नहीं रहना, तुम्हारे पिता ड्राइवर करेंगे, तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेंगे, तुम बैठो, मुश्किल बात है, कहीं और तुम्हें लगाते हैं। पिता ड्राइवर है, जरूरत नहीं कि हॉस्पिटल के ड्राइवर का बेटा है हॉस्पिटल में ड्राइवर ही करे, ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिनिस्टर के चपरासी का बेटा मिनिस्टर बन सकता है, जरूरी नहीं कि वो भी चपरासी ही बने, उत्कर्ष करना पड़ेगा, अभ्युदय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पूज्यपाश्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं स्ट्रगल 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 इज द साइन क्वा नन ऑफ लाइफ एंड स्टेग्नेशन इज ए डेथ। संघर्ष ही जीवन है, स्थगितता मृत्यु है। एक पानी आसमान से बरसता है, वो पानी आसमान से बरसती हुई अगर पहाड़ों में रुक जाएगा, पहाड़ में टिक जाएगा तो एक डबरा बन जाएगा, गंध आ जाएगी, उसमें मच्छर हो जाएंगे, उसको फेंकना पड़ेगा। किंतु वही पानी वही जल ऊपर से गिरेगा तो झरना बन के गिरेगा, उसमें माधुर्य होगा, सौंदर्य भी होगा, और वो दूर तक जाकर के वो छोटा झरना नदी में मिलकर के सागर में भी चला जाएगा। उसने क्रांति की है, गिरना पड़ता है, अवतरण करना पड़ता है। ये गंगा अगर कमंडल में ही रहती ब्रह्मा के तो कमंडल में बंद ही थी, किंतु जब भगवान विष्णु ने विराट स्वरूप धारण किया तो वो ब्रह्मा जी के कमंडल से विष्णु के चरण में चली गई, विष्णु के चरण से वो आई शिव जी के जटा में, वहां पर भी बंद नहीं रही, बंद से मुक्त हुई। तब तो सुरसरी नाम पर्यो, बहती ही चली गई, लोक माता कहलाई। अगर मैं स्वर्ग में रहती थी तो सुरसरी ही कहलाती थी, वह सरिता देवलोक की नदी, किंतु यहां लोक माता बनी है। क्यों? उसने त्याग किया है, उसने तपश्चर्या की है, अवतरण किया है, ऊपर से नीचे आई है, ब्रह्मलोक से विष्णु लोक में गई, विष्णु लोक से कैलाश में गई और आकर के हिमालय के गिरिकंदरा से प्रकट हो गई। तो यदि हमें उत्कर्ष करना है, वस्तुतः परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो हमें अपने गुजराती में क्या बोलते हैं, अंबाड़ी मां बैसी ने छाना नो विनय, वो हाथी के ऊपर बैठे हैं तो नीचे आप गोबर नहीं चुन सकते। तो ये कहते हैं दुनिया में जो अधार्मिक लोग दिखाई पड़ते हैं ना, वो इतने वस्तुतः अधार्मिक नहीं होते ना, ये केवल दुर्भाग्य है कि जन्म के साथ धर्म को बांधने की चेष्टा में संलग्न किया गया है। 20-25 वर्ष पर्यंत एक इंसान को कोई धर्म की शिक्षा दी जाए तो बाद में उसके अंतस चेतन में वह प्रवेश कर जाती है, वह धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। बहुत जरूरी बात है, हमें अपने आप को टटोलना है। यहां पर ध्यान दें, कड़वी बात है मगर सुनना तो पड़ेगा। एक इंसान किसी दफ्तर में काम कर रहा है, बहुत ही छोटी कक्षा का इंसान है, उसकी बेटी की शादी होनी है, तो उसने जाकर के अपने मैनेजर से हाथ जोड़ के कहा मेरी बेटी की शादी है, मैं क्या करूं। तो मैनेजर ने कहा ऐसा करो, पूरे स्टाफ को मिल लो, 300 लोग हैं, मिल लो, हाँ एक चिट्ठी लिखवा दो, चिट्ठी घुमा दो, लोग अपना अपना लिख देंगे कितना पैसा, जितना पैसा ये स्टाफ मिलकर दे देंगे उतना पैसा हम दे देंगे, तो बेटी की शादी हो जाएगी, 300 लोग हैं तो अच्छी हो जाएगी। वो सबके पास गया, किसी ने 5 रुपया, किसी ने 7 रुपया, किसी ने 10 रुपया दिया। ऐसा करते करते उसके पास में 3,500 से ज्यादा नहीं हुआ, तो 3,500 मैनेजर ने दे दिए तो 7,000 हो गए। वो सिर पकड़ के बैठा है। उस दफ्तर में एक ईसाई सज्जन भी है, उसने कहा ऐसे काम करना, छूटने के बाद मुझे मिलना, मैं तुझे चर्च में लेके जाता हूं, बेटे की शादी करा दी है ना, चर्च में लेके गया। फादर ने कहा तुम ईसाई बन जाओ, तुम जैसे शादी करना है हम करा देंगे, 50,000 लगता है कि 1,00,000 कोई चिंता नहीं, तुम्हारी बेटी दामाद दोनों को भी ईसाई होना पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमने अपने समाज को अपने से अलग कर दिया है। हम छोटे लोग को कहते हैं तुम हरिजन हो, तुम उसका हम स्पष्ट नहीं कर सकते, दाहिने हाथ से बायां हाथ नहीं दे सकते। पटेल में 2 डिवीजन कर दिया है, कड़वा पटेल है, लेवा पटेल है, इसकी बेटी उसको नहीं जाएगी, उसकी बेटी उसको नहीं जाएगी, हमने भेद खड़े कर दिए। कृष्ण को कैसे पाएंगे? अभी महाराज जी का प्रवचन हो रहा था, महाराज जी को किसी ने प्रश्न पूछा है कि घूंघट का पट खोल रहे तो हे पिया मिलेंगे, तो क्या होता है? ये तो घूंघट निकाल रखे हमने, हमने पर्दे कर दिए, हमने दीवारें खड़ी कर दी, हमने अपने आप को विभाजित कर दिया, तुम ऊपर हो हम नीचे। बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल। ये बैरागी है, ये सन्यासी है, ये शैव पंथी है, विष्णु पंथी है। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के दादा हुआ करते थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे। दक्षिण भारत के जो शिव भक्त कहते हैं वो 87 नायनास कहते हैं, तो उनमें वो एक माने जाते थे। कहते हैं कि आज से वो 300 साल पहले की बात है, शायद 350 साल पहले की बात, तिरुपति जी के दर्शन को गए थे, मंदिर के पुजारियों ने दरवाजे बंद कर दिए, तुम शैव हो, ये वैष्णव का मंदिर तुम नहीं आ सकते। बड़े उच्च अवस्था के महात्मा थे। वहां पुष्करणी उसमें स्नान किया, बाहर ही बैठ के ध्यान किया। कहते हैं कि जब द्वार खोले गए तो वहां तिरुपति बालाजी का विग्रह नहीं था, वहां शिव का विग्रह था। लोग बहुत दुखी हो गए, वो एक बहुत बड़ा भक्त है, उस भक्त को हमने कुनार किया है, सम्मान के साथ में उसको अंदर लाया जाए, पीतर लाया जाए। हम अपने ही देवताओं के बीच में एक एक भेद कर देते, तुम उस पंथ वाले हो, मेरे पंथ में नहीं जाओगे। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान और भक्ति और कर्म तीनों को पकड़ करके चलना पड़ेगा। ज्ञान को अलग मत करो भक्ति से, ज्ञान सूखा है। पूज्य डोगरे महाराज कहते हैं कि ज्ञान कैसा है, ज्ञान एक साबुन के समान है, केवल कोरा साबुन हाथ में पकड़ो, कपड़े में रगड़ते रहो तो कपड़ा नहीं धुल सकते, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, वो भक्ति है। किंतु पानी भी डालो, साबुन भी डालो, कपड़े भी रख दो, तभी कपड़े सफेद नहीं होंगे, उसको रगड़ना भी पड़ेगा। कर्म तो बीज है, भक्ति का वृक्ष होता है, उसमें ज्ञान का फल होता है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी रुचि कर्म में अधिक हो तो तुम कर्म करो। कोई संत ने ऐसे कहा कि एक 8 मंजिल ऊंची भवन है, 8 मंजिल है, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ऊपर पिताजी रहते हैं। जो बच्चे नीचे हैं उसको एक में पता ही है लिफ्ट यहां होती है, तो लिफ्ट को जाकर के वो चला गया तो पिता के पास पहुंच गया। दूसरे को तो यही पता था कि यहां से सीढ़ियां जाती है, धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। पहला गया ज्ञान से गया, दूसरा गया कर्म से गया, तीसरे को पता है कि पिताजी ऊपर है मैं नीचे हूं, रोने लग गया। पापा पापा, किसी ने कहा ऊपर जाकर के, पापा बोले मैं बहुत बिजी हूं, चपरासी को भेजो, सेवादार को, वो देखभाल करेगा। चपरासी गया, उसको घुमाने ले गया, पान खिलाने ले गया, वीडियो पार्लर में ले गया, साइकिल में घुमाया, समुद्र में घुमाया, किंतु एक मौका है, फिर बोलता है मेरे पापा कहाँ हैं? अरे तुम्हारे पापा नहीं, मुझको तुम जाओ, उसको धक्का मार दिया, अपने कपड़े फाड़ दिए, नाक रगड़ रहा है, वो उसका उठाने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ मेरे पापा को बुला। अब पापा नीचे आकर के उठा करके ले गए। ये भक्ति है। भक्ति में क्या कहा, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्य अभियुक्तानां, मेरे को आप ही चाहिए, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। जब केवल परमात्मा के प्रति ही हमारी निष्ठा होगी, ये निष्ठा बहुत आवश्यक है। हमारी भक्ति कहीं पर भी हो, किंतु हर जगह में भक्ति नहीं हो सकती है। आप मुसलमान बन भी जाएं, किंतु मंदिर के सामने चले जाएंगे तो आपका सिर एक बार झुक ही जाएगा, क्योंकि आप हमेशा आने के लिए आदि हो गए हैं। आप ईसाई बन भी गए तो क्या होता है, आप चर्च में चले जाएंगे तो दोनों हाथ जुड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करेंगे, जैसे आप राम जी को करते हो, जैसे कृष्ण को करते हो, जैसे दुर्गा को करते हो। उपाय नहीं है, तुम्हारा नाम क्या हो गया, राम जैक्सन हो जाएगा। राम तो रहेगा तुम्हारा, तुम राम नहीं काट सकते, राम के बाद में जैक्सन लगाएंगे, राम जैक्सन माइकल, ये कॉकटेल हो जाता है, ऊंधियू दही जाए, हाँ उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। कल भोजन कर रहे थे, हमने कहा देखो भाई, जिस समय में सब्जियों को केवल उबाल करके खाया जाए, उसमें कुछ नहीं डाला जाए, न नमक न जीरा न हींग, उसका स्वाद अपने में होता है। क्योंकि मसाले डाल देते हो सब्जियों का स्वाद तो छूट जाता है, मसालों को रहता है। और प्याज लहसुन, ये हमारे महापुरुष पूछ रहे थे, पांच प्याज लहसुन खाने के लिए क्यों बना किया है? अरे प्याज लहसुन जब तुम खाते हो तो तुम्हें प्याज लहसुन की ही खुशबू आती है, उसी का स्वाद आता है, सब्जी का स्वाद नहीं आता है। करेले में भी प्याज डाल दिया, आलू में भी प्याज डाल दिया, तो प्याज क्या होता है, लहसुन क्या होता है? वो जो मेहनत मजदूरी करने वाले उनके लिए ठीक है, ज्यादा प्याज लहसुन खाने वाले को गुस्सा आएगा। साधु है, संत है, सात्विक पुरुष है, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनको तो दूध तक नहीं पीना चाहिए। क्यों? दूध किसके लिए? गाय का दूध उसके बछड़े के लिए, जो सांड बन के सिर को सिर मारेगा। जो ज्यादा दूध पिएगा, जो ज्यादा मीठा खाएगा, वो ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर सकता है ना। इसलिए कहा हविष्यान्न खाओ, दही खाओ, घी खाओ, किंतु दूध नहीं खाओ। तो ये तमाम बातों को अपने में टटोलना है। हमने तो अपने धर्म को एक ऐसे बंद में बंद करके रख दिया है कि जहां पर हमने खुली हवा की सांस ही नहीं ली। धर्म तो वो होना चाहिए कि जो हमारे हृदय में शांति दे। क्लेश कराने वाला तो धर्म होता नहीं है। धर्म तो आधार है, धर्म तो आश्रय है, धर्म तो हमारे जीवन की रुचि है, धर्म हमारे जीवन की उत्क्रांति है। माता के समान धर्म है, कितनी दूर से भी आए। ये माता जी आकर के प्रणाम कर रही है तो पांव में हाथ, हमने कहा मां पांव में हाथ मत लगाओ, सिर में हाथ रखो। तो मुझे कह रही है तो मुझ क्यों क्यों पाप में डालती हो? तो मैंने कहा तो मुझको क्यों डालती हो? अगर मुझको ही, अगर आपको पाप होना है तो होने दो, मैं क्यों अकेला पापी बनू? आप भी बनो, दोनों साथ में रहेंगे, मतलब क्या होता है? कर्नाटक भाषा में एक कहावत है, कर्नाटक भाषा में क्या कहावत है कि मां का बेटा दिल्ली का बादशाह भी हो जाए तब भी मां के लिए वो बचड़ो ही रहता है, मां के लिए वो पप्पू ही रहता है, मां के लिए वो डब्बू गब्बू ही रहता है, मां के लिए टींगू रहता है। जब टींगू ना कहो तो उसको कुमच अच्छा नहीं लगता है, उसको बड़ा नाम से बुलाओ, हाँ रमेश कुमार, हाँ ये तो वो वेदवित कुमार कुछ नाम कह दो, वेदवित नहीं होता है। हाँ उसको अपने ढंग से बुला बड़ा है, विनिया विनोबा जी को विनिया कहती थी तो उसको खुशी लगती थी। वो तादाद में तो क्या कहा है यहां पर कि हम मनस्वीत कहते हैं, एक व्यक्ति को एक धर्म में जन्म मिल गया है तो ये आत्मा की यात्रा नहीं होती है, ये बाह्य यात्रा होती है। ये मंदिर में जाना है उचित है, घंटी बजाना उचित है। मुझे बात बताएं, कल हमको द्वारकाधीश के मंदिर से जब आए तो एक सज्जन मिले, ऊपर जाकर के आए? मैंने कहा मैं नीचे कभी गया हूं कभी। मैंने कहा ऊपर ही हूं, नीचे में कब आया बता? तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं बाबूलनाथ जी में, बोले हम तो बिल्कुल बिना पानी चढ़ाए 40 साल हो गए हमको, हम जल तक नहीं पीते हैं। ये अच्छी बात है, आपने एक नियम बना रखा है, किंतु अपने आप को थोड़ा टटोलना। 40 साल से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, कभी आपने मन चढ़ाया क्या? बहुत जरूरी बात है कि मैंने मन चढ़ाया क्या? एक बार मन चढ़ा दो, जल चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। जल तो हम घड़ों चला देते हैं शिव जी को, बुरी बात नहीं है, किंतु अपने आप को मेरे तो गिर धरे गोपाल है, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोही, असुवन जल सींच सींच, परमात्मा के नाम के उच्चारण के साथ में क्या आपकी आंखों में अश्रु आते हैं? क्या परमात्मा की छवि देकर के आपको उनके प्रति भाव होता है? क्या हमारे अहमदाबाद में एक महिला है, उनके घर में कोई 350 साल पुराने श्री कृष्ण परमात्मा की बड़े सुंदर विग्रह है, उसको बहुत भाव होता है, तो भाव में गीत भी अंदर से निकलते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनका एक मंडल बन गया है। तो ये माई है, वो गाना वो भजन गाती है, सब लोग गाते हैं, तो फिर किसी ने कहा कि आपके भजन है उनकी सीडी बननी चाहिए, बोले उसका वीडियो भी बनना चाहिए। कृष्ण शंकर शास्त्री जी को हमको बुलाया, कोई टेलीविजन वाला दोस्त था, हम दोनों को बुला करके ले गया, तो वहां हम बैठे थे, वो इतना बड़ा हॉल है वहां बैठे, वो हॉल उनके घर के सामने ही बना हुआ है, और यहाँ वो एक ऐसा दरवाजा है जिसके पीछे से गए तो अंदर कृष्ण भगवान दिखेंगे, ये तो साइड में एक रेलिंग है, उसको वहीं से देखना पड़ेगा। तो हम रेलिंग के बाहर है, कृष्ण का विग्रह बहुत सुंदर अद्भुत विग्रह था, बहुत प्यारा विग्रह था। देखा पीछे दरवाजा खुला है, अंदर कोई भी नहीं है, तो हम पीछे दरवाजे से गए, जाकर के श्री कृष्ण भगवान को आलिंगन किए, किसी ने देख लिया तो चिल्लाई, हाय हाय स्वामी जी अंदर गया, ये लाला जी ने अड़की गया के, वो महाराज अंदर गए और भगवान को उन्होंने स्पर्श कर लिया, हड़बड़ाई हुई, वो महिला अंदर से बाहर आ गई, हम आधे घंटे से बैठे थे, वो बाहर नहीं आई थी, वो बड़ी तपस्वी नहीं है, अपने ढंग से रहती है, हाँ कार्यक्रम बाहर चलेगा, उसको मिलना है तो अंदर जाना पड़े, वो बाहर आ गई, वो क्या करती, हमको देख करके कुछ कह तो नहीं सकती है, फिर भी उसने बड़े प्यार से पूछा, अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए तुमने आके कैसे कोई, उसने हमको पूछा, महाराज ये मेरे प्रभु जी को आलिंगन करके आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने कहा इसको पूछ इसको कैसा महसूस हुआ, अब तक तुम ही चिपकती रही, आज मैं चिपकाऊं, एक नया टेस्ट मिला होगा, क्या कहते हो, अपने आप को हमने दूर करके रख दिया है, दायां हाथ बायां हाथ छूना नहीं, ये नहीं छूना, ये करना नहीं वो करना नहीं, हमारा धर्म यहीं अटक गया है, हमारा धर्म है वहां इतना दुस्तर में हो गया है कि धर्म धर्म नहीं रहा है, वो क्रियाएं हो गई है, कैसी यंत्रवत क्रियाएं हो गई है, इसको हमने रोबोट बोलते ना, रोबोट ऐसे हो गई है। रोबोट क्या करता है, रोबोट को चाबी दे दो, चाबी से चलता है, चाबी से उठता है, चाबी से बैठता है। तो ऐसे ही एक हमारे यहां शब्द है, रसोई पतावी लीधी, गुजरात में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रसोई पतावी लीधी और पूजा पतावी लीधी। तो पतावी लीधी का मतलब क्या होता है, आज निपट गए, आज की पूजा पूरी हो गई, तो यंत्र से। अरे भाव कैसा चाहिए, किसके घर में जलंधर में हमको बुलाया नाश्ते के लिए, स्वामी जी सवेरे आपकी सभा पूरी हो जाएगी तो जलपान हमारे यहां कीजिएगा, सुबह 7 से 8:30 तक सभा होती है, 8:30 बजे गए, 9 बज गया, 9:15 बज गया, मैंने कहा भाई जलपान का क्या प्रबंध है, बोले स्वामी जी लालाजी मुकुट नहीं पहन रहे ना, लालाजी रूठे हुए हैं, तो जब तक लालाजी को खुद का कलेवा ना हो तो हम दूसरे को क्या दें, देखो क्या भाव है, वो दो घंटे से बैठी हुई है मुकुट लेकर के, मेरे लाला आज रूठे हुए हैं, बताइए क्या भाव है उसका, मेरे प्रभु आज रूठे हुए मुकुट को धारण नहीं कर, हट तो मैं पहनाता हूं, मैंने पहना के आ गया, उसको बड़ा बुरा लगा, महाराज जी वो कलेवा नहीं करेंगे, क्यों आपने जबरदस्ती किया है उसके साथ, ये भाव है उसका, वो धर्म में तादात्म्य है, तद्रूपता है, वो बिना कृष्ण के नहीं चल सकती, शिव जी को ये सब नहीं चाहिए, कृष्ण को तो चाहिए, उसको गर्मी के दिनों में एक खसका टट्टी लगाना पड़ता है, एयर कंडीशन करना पड़ता है, सुबह दूध देना पड़ता है, शाम को शयन करना पड़ता है, हमारे बाबुलनाथ मंदिर में बोले बम सब लोग आए, जिस पुड़िया में आप फूल लेके जाते हो, बिलो पत्र लेके जाते हो, लोग वो फूल चढ़ा देते हैं, पुड़िया भी उसके बांधा हुआ डोरा भी डाल के आ जाते हैं, महादेव को सब खपेगा बोलता है, महादेव को सब चलेगा, उस मदान का भस्म भी चलता है, लाला को नहीं, लाला को दूर से करना पड़ेगा, लाले बड़े कमनीय है कोमल है, तो अपने अपने धर्म है, अपने अपने मजहब है, तो मजहबों का मतलब क्या है, यही तो है कि हम आत्म शांति करें, आत्म उन्नति करें, आत्म उत्कर्ष करें, आत्म अभ्युदय करें, किंतु हमने इन धर्मों को 3 जगह में बांट दिया है, कृष्ण कहते हैं ऐसे मत करो, किंतु एक वर्ग तो है जिनका ढांचा ज्ञान का है, वो जो ज्ञान का ढांचा है, वो ज्ञान के ढांचे का अर्थ है कि व्यक्ति जानने को आतुर है, वी लाइक टू रियलाइज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, वो अद्भुत वस्तु तो क्या है, वो अपना जीवन पूरा उनकी खोज में लगा रहता है, जानना उसका सबसे बड़ा रस है, जिज्ञासा उसका मार्ग है, वह कुछ भी खो सकता है, दांव पर लगा सकता है अपने जीवन को, किंतु 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होगा, मैं जानना चाहता हूं। हम कुछ भी जानते हैं तो घटना होती है क्या, तीन हिस्से टूट जाते हैं, जानने वाला अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। एक जानने वाला अलग हो जाएगा, हाँ वो ज्ञाता है, ज्ञेय जो जाना गया, और तीसरा तीन अलग हो जाएंगे। और तीनों जब एक नहीं हो, सूजी सूजी रखो, घी घी रखो और चीनी चीनी रखो, तो सूजी सूजी अरे तीनों को मिलाओ भाई, पकाओ, तब तो हलवा बनेगा। किंतु हम तीनों को अलग रखना चाहते हैं। जब ध्यान करने बैठते हो, समझो मैं यहां बैठा हूं मेरे कृष्ण सामने बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं मेरे राम सामने, मैं यहां हूं शिव सामने, कभी ध्यान नहीं होगा, क्योंकि आपने उससे अपने आप को अलग कर दिया है। ध्यान है वो तादात्म्य है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, वो दोनों को जानना भाई। वो हमारे क्या बोलते हैं कि जो ऐही बानक बिहारी लाल जी कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं कि ये राधा जी का रंग तो पीला है, कन्हैया तुम्हारा रंग तो नीला है, तुम यही बानक मो मन सदा सदा बिहारी लाल। मतलब कैसे झांकी पड़े कि श्याम हरित दुति होए, मेरे हृदय में श्याम भी रहे राधे जू भी रहे, राधा और श्याम दोनों, ऐसे भाव। ये हमारी माला है, बहुत साल से माला है, तो ये माला है टूट गई थी। तो वृंदावन में किसी एक वो बड़े भक्त होते हैं वृंदावन वाले, तो वहां सखी भाव में रहते, वो पुरुष है दाढ़ी भी है, फिर भी वो तो घूंघट निकाल के रहते, घूंघट निकाल के चलते ही घूंघट निकाल के बोलते, तो मुझे बोले सखी तुम्हारी माला टूट गई है, हम ठीक से बना दें। हमने बोला बना दो, उसका भाव क्या है, बैठ के उसने एक घंटा लगाया टक 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 बना दी, ऐसी खींच के बनाई कि माला को ऐसे कर नहीं सकते, खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा दीदी, ऐसे कहा दीदी वो आपने ऐसे बनाई है तो माला घूमेगी नहीं। तो कहा भयो धीरे धीरे चलाओ। तो हमने कहा भयो क्या, ये इतनी कड़क है हमारे यहां सब छील जाएगा, और जब छील जाएगा तो हमारे लाला है उनको बहुत दुख हो जाएगा। वो लाला को जो दुख हुआ ना, तो लाली राधे जो भी दुखी हो जाएंगे, मर मर ऐसे बोल के मेरे हाथ से माला लेके तोड़ के रख दी। हमारी राधे जी को काहे दुख करते हो, बताओ उसका भाव राधे जी के प्रति कितना है कि वो सुनना भी नहीं चाहती, हमारे राधे जी को दुख है। हमारे साथ में एक और संत है, बाकी बिहार जी में हम खड़े आंख बंद करके खड़े, वो महात्मा है अपने ढंग से कुछ मंत्र भी बोल रहे। ऐसी एक सखी आई राधे जी की, कोनी मारी इतना जोर से महात्मा को गिरा दिया, पर ऐसे बोलती है हाय हाय तुरे बंगलों में खड़ो है रे, कितनो सुंदर लगे रे, बर जाऊं। इनके भाव को देखो, उन्होंने अपने आप को राधे जू के संग कर दिया है। कृष्ण मेरी आत्मा है, कृष्ण मेरा प्राण है, किंतु राधे जू है उसके बिना कृष्ण हो ही नहीं सकता है। राधे की ही हम दासी, राधे की ही हम सके, इतना भाव। एक उच्च स्थिति में रहते, मूछे उनकी दाढ़ी हो गई है, बूढ़े हो गए, किंतु घूंघट निकाल के चलते, ऐसा करके देखते ये क्या भाव है। ज्ञाता यहां अलग नहीं है, ज्ञेय भी अलग नहीं है, ज्ञान भी अलग नहीं है, वहां उनके चावल दूध और चीनी अलग नहीं है, सब मिलके खीर बन गया। तो कहते हैं कि जो खोज हमें करनी है वो आकाश से परमात्मा नहीं आएगा, हमारे भीतर करनी है। हम बाहर बाहर हैं इसलिए तो कष्ट हो रहा है, बाहर से थोड़ा भीतर जाने की कोशिश करें। जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारा धर्म है, हम नमाज भी पढ़ लें, मंदिर में चले जाएं, यज्ञ कर लें, या तो गुरुद्वारा में चले जाएं, ये तमाम प्रक्रिया बाह्य है, स्थूल है, उनको नहीं छोड़ना, करना चाहिए। बाहर से ही भीतर आ सकते हो। अगर आप इस रोड पर से नहीं आओ, बाबुलनाथ रोड से नहीं आओ, दाएं बाएं से नहीं आओ, तो ये प्रेमपुरी आश्रम में आने तक आपको प्रेमपुरी चौक तक तो आना ही पड़ेगा, और प्रेमपुरी चौक में आने के बाद में प्रेमपुरी भवन में घुसना पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठो तो ऊपर आते आपका तीसरा माला पांचवा माला आता है। बाहर से अंदर आना पड़ता है, क्रियाओं को बाहर से प्रारंभ करो। जब बाहर से प्रारंभ करोगे तो धीरे धीरे अंदर जाओगे, किंतु बाहर के बाहर मत बने रहो। 40 साल तक जल चढ़ाना बुरी बात नहीं है, साधना है आपकी। कम से कम सीढ़ियां चढ़ते हो उतरते हो तो आपकी वर्जिश तो होती है, पेट भी अच्छा रहेगा, घुटने भी नहीं जाएंगे, जल्दी उठोगे भी, तो गुण तो हुआ ही है, किंतु थोड़ी प्रगति होना चाहिए। बच्चा पैदा हो गया वाव 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 करता है, मैम 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 करता है, किंतु वो 8 साल का हो जाए तब भी वाव वाव मैम मैम करे, तो सोचना कुछ गलत बात है। चाहे बच्चा पैदा हो गया, वो अपने आप करवट नहीं बदलता है, अपने आप नहीं बैठ सकता है, तो कोई चिंता नहीं, हम उसको गोदी उठा लेते हैं। किंतु 12 साल का हो गया फिर भी हम गोदी उठाते रहे तो कुछ गलत है। तो अपने आप को सोचना, अपने आप को टटोलना, अपने आप को देखना, जिस धर्म पर हम चल रहे हैं, जिस साधना को चल रहे हैं, जिस मार्ग के हम यात्री के आगे बढ़े के नहीं हुए, ज्ञान की खोज उसकी खोज है। उन आकाशों में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मुझे बात बताएं आप कि ये एक बहुत बड़ा भवन है, मान लीजिए कि सामने और भी बड़े बड़े कमरे हैं, वो आपका एंटरप्राइज जो है, वो माताजी जो मुझको लेकर के गई, मेरे को बताया खिड़की में, स्वामी जी आइए देखिए ये मुकेश अंबानी का मकान है, मुकेश अंबानी का मकान बताई वो मेरे को। तो मुझे बात बताएं कि मुकेश अंबानी का जो मकान है उसके भीतर जो जगह है जिसको हमने स्पेस कहते हैं, आकाश कहते हैं, इसको आपने मठाकाश कहते हो, ये प्रेमपुरी के अंदर का एक मकान आकाश है, बाबुलनाथ जी के आकाश है, रणछोड़ राय का आकाश है, कि हमारे ये हरे कृष्ण का आकाश है, कि सामने कोठियों में सब आकाश है। तो ये क्या आकाश भिन्न भिन्न है क्या? एक छोटी गरीब की झोपड़ी का आकाश और हीरे जवाहरात लगे हुए जो बड़े मकान है उसके भीतर का आकाश एक है कि भिन्न भिन्न है? तो उनकी दीवारों को हटा दो, दीवारों को हटा दो तो पता हो जाएगा कि वो गरीब का आकाश गरीब नहीं होता है और अमीर का आकाश अमीर नहीं होता है, वो आकाश तो एक ही है। किंतु हमारी तकलीफ है, हम कहते हैं हम अमीर है, हमारा आकाश ज्यादा कीमती है। दीवारें हमने बनाई है और हमने ही एक युद्ध खड़ा किया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए? कि हमको यही चाहिए कि हम देखें कि ये आकाशों में कोई भेद नहीं है। अभिन्नता तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक हम झोपड़े और महल को मिटा करके नहीं रख सकते। हमने अपने महल में भी ऐसे झोपड़े खड़े किए, हमने महल खड़े किए हैं कि भाई हम तो अमुक धर्म को मानने वाले हैं, हमारे गुरु हैं वो तो इम्पाला गाड़ी में घूमते हैं, हमारे गुरु हैं 300 देश में जा चुके हैं, हमारे 300 मंदिर हो गए, तो हमारे गुरु के समान और कोई गुरु नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, पला गाड़ी में घूमे तो क्या हो गए। मुझको बात बताओ कि जब उस गुरु का देहावसान होगा तो उसको जलाने के लिए आप चंदन की भी लकड़ी लाओ तब भी क्या हो गया? भाई मुठ्ठी राख ही रहेगी कि नहीं? उस गुरु को जलाने के बाद में जो शेष रहेंगे वो क्या हीरा मोती रहेंगे? एक कबीर को जलाने के लिए भी हीरा मोती नहीं रहे और श्रीडी साईनाथ को जलाने के लिए भी हीरा मोती नहीं रहे, महात्मा गांधी के पीछे भी हीरा मोती नहीं रहे, सबके पीछे तो राख ही बचती है, तो फिर क्लेश क्यों करते हो? इम्पाला में घूमते हो तो घूम लो, अगर आप चांदी के सोने के बर्तन में खाते हो तो खा लो। आप कहते हो कि हमारे हम खड़े रहे सारे लोग हमें दंडवत करें तो करा लो, किंतु अंत में तो वही होगा। हाँ क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, एक मुट्ठी खोल के चले जाएंगे। हाँ, मुट्ठी बांध के आए थे, वो गुजराती में कहते हैं जो सबसे पहला जो कपड़ा देते हैं ना उसको जबला बोलते हैं। जबले में कोई जेब नहीं होती है, कफन में भी कोई जेब नहीं होती है, फिर इतनी लड़ाइयां क्यों करते हो? इतनी क्लेश क्यों करते हो? हम दोनों में बीच में फर्क क्या है? रास्ता यही है, एक भक्ति का रास्ता है, एक कर्म का है, एक ज्ञान का है। ज्ञान को तो पाना पड़ेगा, बिना ज्ञान के गुजारा नहीं है, वो बिना कर्म के भी गुजारा नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं, यदि मैं कर्म ना करूं तो लोग आलसी हो जाएंगे। मुझे करने के लिए वस्तु तो कुछ भी नहीं है, किंतु भक्ति भी चाहिए। भक्ति मने शरणागति है, सरलता है, रुजुता है, कारुण्य है। तो प्रेम वाला प्रेम करे, कर्म वाला कर्म करे, ज्ञान वाला ज्ञान करे, किंतु ज्ञान वाला कभी ये ना कहे कि प्रेम गलत है, प्रेम वाला कभी करे कि कर्म गलत है। जो ज्ञान में रहता है वह भी कर्म को करने वाला है, और जो कर्म में रहता है वो बिना भक्ति के कर्म नहीं कर सकता है। किसके पांव दबाना वो एक सेवा है, तो कर्म है, मगर जिसके पांव तुम दबा रहे हो उसके प्रति भक्ति ना हो तो पांव को तोड़ के रख दोगे। हाँ, वो थोड़ा होता है पांव दबाना। वो एक गुरुजी थे, उनके दो शिष्य थे, तो एक शिष्य ने कहा गुरुजी हम आपके चरण की सेवा करेंगे, तो एक ने कहा दाहिना पांव मेरा है, दूसरे ने कहा बायां मेरा है, तो दाहिना मैं दबाऊंगा बायां मैं दबाऊंगा। एक दिन गुरुजी दोपहर में थोड़ा वाम कुक्षी कर रहे थे, दाहिने पांव के ऊपर बायां पांव था, तो दाहिने पांव वाला आकर बोलता है गुरुजी क्या हो रहा है, क्यों क्या हो गया, उसका पांव मेरे पांव के ऊपर क्यों आया? वो लाठी लेकर के जोर से मार दिया। गुरुजी इतना चिल्लाए तो दूसरे को बुलाए, वे क्या हो गया, देख मेरे पांव को, इसका पांव कहां है, मेरे पांव को मारा है। मैं इसकी टांग भी तोड़ता हूं, दूसरी टांग भी तोड़ दे। तो ये क्या है? ये पागलपन है, ये मूर्खता है। इस मूर्खता से तो बाहर आना पड़ेगा। ये तेरा नहीं है, यह नहीं तेरा, यह नहीं मेरा, ईश्वर का ये राज है। फोगट खावे, चोर कहावे, कुरान की आवाज है, सत्य एक ही है, तथ्य एक ही है। उसको आप किसी भी रूप से देख सकते हो, जैसे कि अग्नि है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। चौथे अध्याय का 24वां श्लोक कहता है कि अग्नि मैं हूं, और अग्नि में आहुति मैं हूं, समीधा मैं हूं, डालने वाला भी मैं हूं, और मुझको ये प्राप्त होता है। बहुत जरूरी बात है। हमारे एक प्रिय दोस्त है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने नृत्य किया, कुचिपुड़ी नृत्य, अद्भुत किया, इतना अद्भुत था। हमें बुलाया स्वामी जी कि आपकी उपस्थिति में आपके अतिथि विशेष पद पर कार्यक्रम होगा। वो इतना अद्भुत था, हमने कभी देखा नहीं, सुना था कभी किंतु देखा नहीं, कि वो स्टेज पर आकर के, वो अंतिम कार्यक्रम था उनका, कि स्टेज के ऊपर में आकर के उन्होंने एक बहुत बड़ी चादर लेके आए थे, उनको गीला किया, निचोड़ करके रख दिया। फिर दो लड़कियां ही नाच करते करते पूरे ये हमारा जो स्टेज था उसमें गुलाल बिखेर के चली गई। चारों ओर से लड़कियों ने पकड़ के रखा उस कपड़े को, बहुत बड़ा कपड़ा, स्टेज जितना बड़ा है उतना बड़ा कपड़ा। फिर यहां से मां का प्रवेश हुआ, वहां से बेटी का प्रवेश हुआ, यहां से कृतिका प्रवेश हुआ, यहां से हेमा का प्रवेश हुआ। दोनों ने नृत्य किया, इतना अद्भुत नृत्य था। जब वो नृत्य करती थी, वो जमीन में तो रंग डाला हुआ था, जमीन से 8 इंच 10 इंच ऊपर तक कपड़ा था, किंतु उस कपड़े पर पांव मारो ठप तो नीचे तो छुएगा, तो गीले कपड़े में रंग लगता था। जब नृत्य पूरा हुआ, कपड़ा उठा लिया, तो दो मोर ऐसे नृत्य कर रहे हैं, ऐसा छप गया। वो कितना कैलकुलेशन उनका होगा। हमें कहा स्वामी जी आपके हाथ से इनको प्रमाण पत्र अरंगत्रम था, रंग प्रवेशम था कुचिपुड़ी का, आपके हाथ से प्रवेश पत्र मिलेंगे। मैंने कहा किसको वहां कहा जाए? बेटी को नृत्य की शिक्षा प्राप्त हो उसके लिए मां उसको वो नृत्य के स्कूल में लेकर के जाती है। उसको देख के प्रेरणा हो गई, मां भी सीखना चालू कर दिया। तो बेटी को जन्म तो माने दिया है, किंतु मां को ये सीखने की शिक्षा के लिए प्रेरणा का जन्म तो बेटी ने दिया है, किंतु पति है और पिता है, उनकी अनुमति, सास ससुर की अनुमति, ये तमाम बात होने पर गुरु ने इतना बढ़िया सिखाया, वाद्यकारों ने इतना सुंदर बजाया, मेकअप वालों ने इतना सुंदर मेकअप किया, कपड़े वालों ने इतने सुंदर कपड़े किए, संगीतकार ने बढ़िया गाया, और हम लोग भी तो बैठे यहां पर, बिजली भी तो नहीं चली गई, सब कुछ हुआ तब तो सुंदर हुआ ना। तो ये कौन किसको बढ़िया कहे? ये तो हमारे नरसी कहते हैं, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है, गाने वाला भी वही है, बजाने वाला भी वही है, नृत्य करने वाला भी वही है, सिखाने वाला भी वही है, देखने वाले भी वही है। तो ये जब भान हमारे हृदय के अंदर में एक ज्ञान की एक अनुभूति हो जाएगी, हम उस ज्ञान की अनुभूति की नींव के ऊपर ही भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति है, और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। उन दोनों को जोड़ने के लिए जो क्रिया है वह कर्म है। कृष्ण कहते हैं तुम किसी भी मार्ग से जाओ, जो कुछ भी करो सब कुछ मैं हूं, किंतु प्रयत्न करो, साधना करो, उपासना करो, आराधना करो, किंतु मुझको प्राप्त हो। आज बड़ा पवित्र दिवस है, विक्रम संवत के नए दिन का प्रारंभ हो रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है, और महाराष्ट्र में हम हैं, इस भूमि में, इसको गुड़ी पड़वा कहते हैं। शिवाजी महाराज ने अपना राज्य गुरु रामदास जी को दिया था, रामदास जी ने उसकी तलवार को ग्रहण करके अपना कौपीन का वस्त्र देख ले जाओ, ये हमारा झंडा है उसको धारण करो। तो उस दिन से रामदास जी के कमंडल और गेरु वस्त्र को झंडे में लटकाया गया। तो शिवाजी ने कहा कि जैसे कि भगवान रामचंद्र हैं, उनकी पादुका रख करके भरत ने राज्य किया था, ऐसे आपके कमंडल और गेरु वस्त्र को ही हम गुरु मानेंगे, राज्य के अधिकारी मानेंगे, इनके चरण में हम सेवा करेंगे। ऐसा गुरु के प्रति निष्ठा बताने का आज का पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा के जैसा है। सभी को शुभकामनाएं, सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, नूतन वर्ष की शुभकामना। ओम शांति। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। 5 मिनट अधिक लिए हैं इसलिए क्षमा करें।